फिलहाल तो बस यही दुआ करो कि उनकी याददाश्त ज्यादा ना गई हो और वो पहले की तरह ही नॉर्मल बिहेवियर करें। अब सबके दिलों में एक ही इंतजार था, 2 से 3 घंटे के अंदर बस अरमान के होश में आने का। अब आगे सुमित ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो तो तुम अपने जान पहचान के लोगों का इस्तेमाल करके कोई तो एंटीडोट वगैरह बनवा सकते हो। और वंशिका, वंशिका भी तो इस मामले में जीनियस है, उसने पहले भी तो अरमान की जान बचाई थी, उसने भी तो पहले किसी वायरस से अरमान की जान लेने की कोशिश की थी और उसके बाद उसने उसका एंटीडोट वगैरह बनाया था। ध्रुव को सुमित की बात सुनकर झटका सा लगा, उसके दिमाग की बत्ती जली और वो तुरंत सुमित के गले से लिपट गया और आश्चर्य से खुश होकर बोला, अरे सुमित भाई, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। और वंशिका, उसे तो शुरू से ही इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है और मुझे पूरी उम्मीद है वंशिका एंटीडोट बना सकती है और हो सकता है कि फिर अरमान भाई पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल अरमान भाई जैसे भी हैं, हमें उन्हें इस रूप में एक्सेप्टेड करना होगा। एक और बात, आप सभी याद रखिएगा, कोई भी भूलकर उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर वो कुछ भूल जाते हैं तो आप लोग उन्हें कुछ भी याद कराने की कोशिश नहीं करनी है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी थी या वैसी थी, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो अरमान भाई अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि वो क्या भूल रहे हैं। और अगर उनके दिमाग पर ज़्यादा जोर डाला गया तो उनके दिमागी नसें भी फट सकती हैं और फिर उन्हें बचा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब जैसे ही ध्रुव ने ये समझाया, वैसे ही सब लोगों को जैसे सांप सूख गया था। सब लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, उनको लगा जैसे किसी ने उनका दिल पकड़कर भींच लिया हो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। कहाँ तो उनका हंसता खेलता खुशहाल परिवार था, सब एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे थे, सब एक दूसरे का प्यार से ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे थे, और अब पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी मुसीबत उनके परिवार पर टूट पड़ी थी। सबका दिमाग एकदम से खाली हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बम गिरा हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऊपर से वो चुड़ैल वसुंधरा और उसका बेटा वीर मेंशन में आ गए थे। अचानक आहान दबी हुई आवाज में बोला, जब से ये वसुंधरा और वीर हमारी जिंदगी में आए हैं, एक बार फिर वसुंधरा नाम की औरत की पनौती अरमान भाई की जिंदगी में शुरू हो गई है। देखा आप लोगों ने, ये औरत कितनी ज्यादा बुरी है। इसके कदम रखते ही अरमान भाई की यादें चली गईं और मेरे अरमान भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि ये हमला अरमान भाई के साथ सम्राट ने किया है या फिर किसी और ने किया है। और अगर अरमान भाई ने ब्लैक डेविल को जड़ से मिटा दिया है तो ये हरकत उनके साथ कौन कर सकता है। मुझे तो लगता है कि इस वसुंधरा नाम की औरत ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है, पता है क्या? अरमान भाई को पैदा करके, वरना उसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। कहीं ना कहीं आहान के दिमाग में बस यही चल रहा था, उसे बस अपने भाई को सही सलामत और ठीक देखना है। फिर उसने अपने आंसुओं को साफ किया और एकदम से गंभीर होकर बोला, अगर अरमान भाई कुछ भूल भी जाएंगे तो मैं भूल कर भी उन्हें कुछ याद कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल करूंगा। कहीं ना कहीं आकाश, सुमित और ध्रुव तीनों ही आहान को लगातार यही बात समझा रहे थे कि वो भूल कर भी, गलती से भी, अरमान के सामने किसी बात का कोई जिक्र ना करे। और सबको सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि कहीं अरमान आस्था और अंश को ना भूल जाए। यही अनजाना सा डर सबके मन में बार बार उमड़ रहा था। और वो सब अच्छी तरह जानते थे कि आहान में कितना ज्यादा बचपना है और वो एकदम मुंहफट भी है। उसे जहां जो कुछ बोलना होता है वो बिना झिझके बोल दिया करता था। इसीलिए सभी लोग बस सिर्फ आहान को समझा ही रहे थे कि उसे भूल कर भी अरमान से किसी से तरह की कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी है। वहीं टाइगर और मारिया दोनों ही एक दूसरे के करीब खड़े हुए थे। आज दोनों के ही चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ छलक रही थी, क्योंकि वो दोनों भी इस बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहे थे, अगर अरमान के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो सिचुएशन कितनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और अगर अरमान इस सिचुएशन में अंश और आस्था को ही भूल गया तो ये कितनी दर्दनाक बात हो सकती है, स्पेशली आस्था के लिए। आस्था के लिए तो ये उसकी जिंदगी का सबसे सदमा हो सकता है। फिलहाल सभी लोग बस अपने अपने तरीके से ये सारी बातें सोच रहे थे, लेकिन इसका अंदाजा, इसका रिजल्ट तभी निकल सकता था जब अरमान को होश आएगा, क्योंकि बिना अरमान को होश में आए वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। और ना ही उन्हें अभी तक ये पता था कि अरमान ने अपनी कितनी यादों को खोया है और अरमान को अभी क्या क्या याद नहीं है, क्योंकि जब तक अरमान पूरी तरह से होश में नहीं आ जाता तब तक उसके बारे में कुछ भी कह पाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में आस्था को कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर रखा था। मैनेजर और साथ ही साथ सेल्स गर्ल्स सभी गुस्से से आस्था को एकटक देख रहे थे, क्योंकि आस्था ने सेल्स गर्ल्स पर हाथ उठा दिया था तो उसका तो गुस्से के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। और उसने मन बना लिया था, ये लड़की जिसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले स्टाफ अपने आप में ही काफी ज्यादा अमीर थे,
क्योंकि उनकी सैलरी पैकेज काफी हाई हुआ करता था जो कि अविनाश उन्हें प्रोवाइड कराया करता था। फिलहाल अब एंजल जैसे ही वहां पहुंची उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां पर आस्था के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। लकीली एंजल टाइम पर पहुंच चुकी थी और उसने ऊंची आवाज में उन्हें रोकते हुए फटकारा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब एंजल को वहां देखकर मैनेजर थोड़ा सा सकपका गया क्योंकि मैनेजर एंजल को अच्छी तरह से जानता था। मिस एंजल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने मैनेजर ने एकदम से सवाल किया। लेकिन एंजल की नजर तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था पर थी और उन बॉडीगार्ड पर जिन्होंने आस्था को पकड़ा हुआ था, और उसे लग रहा था कि आज तो इन बॉडीगार्ड के साथ साथ उसकी जिंदगी का भी आखिरी दिन हो सकता है। अगर गलती से अविनाश को यह पता चल गया कि आस्था के साथ इस तरह का बिहेवियर हुआ है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। एंजल तो अपनी जिम्मेदारी पर आस्था को बाहर लेकर आई थी कि वो उसकी पूरी तरह से देखभाल करेगी, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो मामला ही अलग हो चुका था, यहाँ पर तो कहानी ही अलग चल रही थी। अब ये देखकर एंजल जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आई और उन्हें घूरते हुए डांटकर पूछा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? ये क्या कर रहे हो तुम सब, और तुम लोगों ने इसे क्यों पकड़ा हुआ है? तभी वो मैनेजर आश्चर्य से एंजल को देखते हुए पूछता है, मैडम आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? ये लड़की यहाँ पर घुस आई है और यहाँ से महंगी ड्रेसेस कलेक्ट कर रही है, लेकिन पैसों के नाम पर इसके पास कुछ नहीं है। जरूर ये लड़की फ्रॉड है या चोरी करने के इरादे से यहाँ आई है, और हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसने हमारी एक स्टाफ पर हाथ भी उठाया है। इस लड़की को तो हम सीधा यहाँ से पुलिस के हवाले करेंगे।
ये सुनते ही आस्था एकदम से पैनिक होने लगी थी। भले ही अरमान ने पुलिस का डर उसके दिल और दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन पुलिस का नाम आते ही उसका डर अपने आप भर आता था। वो तुरंत आंखों में आंसू लिए हड़बड़ाहट में बोली, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की है, प्लीज, और पुलिस को मत बुलाना। अब जैसे ही आस्था ने आंसू भरी आंखों से डरते हुए खुद को छुड़ाना शुरू किया तो वैसे ही मैनेजर और ज्यादा शोर हो गया। उसे लगने लगा कि जरूर ये लड़की कोई ना कोई चोर है जो इस तरह से पुलिस को बुलाने से मना कर रही है। अगर इस लड़की के मन में चोरी का कोई डर नहीं होता तो भला ये पुलिस को बुलाने से मना क्यों करती? तब वो मैनेजर तुरंत ही एंजल को एटीट्यूड से देखते हुए बोला, देखा आपने, ये लड़की पक्का कोई चोर है, वरना वो पुलिस से इतना ज्यादा क्यों डरती? और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैडम मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अविनाश सर के लिए काम करती थी, और मैंने सुना है कि सर ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। असल में कुछ महीनों के लिए एंजल अविनाश के साथ इंडिया चली गई थी, तो सभी को लगा कि इस वक्त एंजल को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि अविनाश की गैर मौजूदगी में उसका काम उसकी कंपनी के मैनेजर संभाल रहे थे। और इस बारे में ज्यादातर जानकारी छुपाई गई थी कि मिस्टर अविनाश रघुवंशी एकदम से कहाँ चले गए हैं, क्योंकि ये बात पूरी तरह से राज रखी गई थी। ये सुनकर एंजल का माथा ठनका। उसने अगले ही पल उस मैनेजर को घूरते हुए होंठ भींचकर डांटा, ये क्या बदतमीजी है मैनेजर, अभी और इसी वक्त आस्था को छोड़ो, याद रखना उसका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना। वो मैनेजर तो एंजल को इस तरह से भड़कते हुए देखकर थोड़ा सा चौंक गया। वैसे भी वो फ्लोर मैनेजर था तो उसकी अच्छी खासी पोजीशन और पहुंच थी। अब उस मैनेजर ने जैसे ही अपने स्टाफ के सामने एंजल को इस तरह से ऊंची आवाज में अपनी बेइज्जती करते हुए देखा तो वैसे ही उसका दिमाग एकदम से घूम गया और वो एंजल को देखकर बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम एक मामूली सेक्रेटरी हो और सुना है कि तुम्हें ऑलरेडी रघुवंशी साहब ने नौकरी से निकाल दिया है, तो फिर तुम किस बेसिस पर मुझे इस तरह से ऑर्डर दे रही हो? कहीं तुम ही तो इस लड़की को यहाँ पे लेकर नहीं आई हो अपने साथ चोरी करवाने के लिए? अब जैसे ही मैनेजर ने एंजल की बेइज्जती करना शुरू किया, एंजल की आंखें गुस्से से तिलमिलाने लगी और उसने आगे बढ़कर मैनेजर के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और अगले ही पल धीरे से रूखे अंदाज में बोली, अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अविनाश को ये पता चल गया कि तुमने हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी की है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही एंजल ने सीधे अविनाश का नाम लिया तो वो मैनेजर गुस्से में और ज्यादा तिलमिला गया। उसने तुरंत गार्ड्स को इशारा किया और जोर से चीखा, इस लड़की को भी पकड़ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि ये यहाँ पर घुसपैठियों की तरह घुस आई है और एंजल इस लड़की को अपने साथ चोरी करवाने के इरादे से लेकर आई है, और अब वो सीधे सीधे बॉस का नाम यूज करके उसे धमका रही है। तो उसे लगा कि जैसे ही वो एंजल को अविनाश के सामने पेश करेगा, अविनाश खुश होकर उसे इनाम भी देगा। फिलहाल एंजल के बेबाकी से बोलने पर तो मैनेजर आग बबूला हो उठा और उसने एंजल को डांटते हुए कहा, अपनी हद में रहो एंजल, तुम इस तरह की हरकत नहीं कर सकती हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस तरह से अपने बॉस का नाम भी नहीं ले सकती? और हाँ, मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि अविनाश सर ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है और इसी बात को लेकर तुम यहाँ हम पर गुस्सा निकाल रही हो। अब जैसे ही मैनेजर ने ये कहा तो ये सुनकर एंजल का चेहरा गुस्से में तमतमाया। एकदम से उसे याद आया कि अविनाश ने उसे बताया था कि वो अब अपनी सेक्रेटरी के तौर पर किसी और को रख रहा है। आखिर अविनाश अपने ऑफिस में अपनी पत्नी को सेक्रेटरी थोड़ी न बनाकर रख सकता था। अचानक एंजल हल्का सा मुस्कुराई और मैनेजर की ओर देखकर कड़वाहट से बोली,
मुझे लगता है कि अविनाश ने जो नया सेक्रेटरी रखा है वो जरूर तुम्हारा कोई पहचान वाला है, तभी तो तुम इतना यकीन के साथ कह रहे हो कि अविनाश ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब ये सुनकर वो मैनेजर जोरों से हंसने लगा और एकदम से बोला, देखा, तुम्हारा सच पकड़ा गया ना। अरे मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर एंजल ने उस मैनेजर को नाराज नजरों से घूरते हुए देखा और अगले ही पलों से समझाया, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मिस्टर रघुवंशी ने नौकरी से इसीलिए निकाल दिया है क्योंकि मैं अब उनकी बीवी हूँ, उनकी सेक्रेटरी नहीं। उन्होंने मुझसे शादी कर ली है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जिस लड़की को तुमने अपने गार्ड से पकड़वाया है ना, वो मिस्टर रघुवंशी की सगी बहन है। अब ये सुनकर वो मैनेजर एक पल के लिए शांत हुआ और अगले ही पल वो बेपरवाह होकर जोरों से हंसने लगा। उसके साथ साथ बाकी के स्टाफ भी हंसने लगे। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था मैनेजर के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में?